को डॉलर से हटा दिए, ठीक है जी। दिस इज अ ह्यूज, सी वेस्ट इज नॉट गोइंग टू बी अ यूनिपोलर वर्ल्ड एनी मोर, डॉलर विल नॉट हैव।
और अमेरिका ने भी रिसेंटली सैंक्शंस जब लगाई थी ईरान इसके ऊपर, रशिया के ऊपर, तो रशिया ने कहा था हम अमेरिकन डॉलर में, अमेरिका को तो बहुत लॉस मिलेगा सर, बड़ा लॉस मिलेगा
जी। तो सऊदी अरेबिया ने अभी चार दिन पहले रिफ्यूज कर दिया ना जी, क्योंकि उनकी रिन्यूअल पे आ रहा था कॉन्ट्रैक्ट। सो इट इज नॉट जस्ट कि जी अमेरिका और ये पर्टिकुलर, ये लार्जर पिक्चर जो है द वर्ल्ड इज टर्निंग नाउ एंड इट इज अ वेरी डेंजरस टाइम इन विच वी आर लिविंग।
थैंक यू वेरी काइंडली आशा रजीम से मैंने आपकी बात की। देखिए साहब, बिल्कुल अपने खोल में भी बंद मत रहिएगा। मेरा कल का प्रोग्राम तीन सेगमेंट्स में आएगा, कर्नल इनामुर रहीम का हाई रिक्वेस्ट, प्लीज उसके तीनों सेगमेंट जरूर सुनिएगा आशा रजीम। बाज़ोकात अभी आज बहुत बड़ा ट्रुथ अनवेल हुआ और मेरा मकसद इस प्रोग्राम का भी सिर्फ ट्रुथ अनवेल करना है कि वो जो कराची का एक पुलिस ऑफिसर हम कहते हैं जी, वो तो ये कि किसी के मुंह में अल्फाज डाल देने, मगर पीछे कौन सपोर्ट कर रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर रहे। मगर साहब सऊदी अरेबिया तो मुझे लगता है चीता हो गया कि सऊदी अरेबिया ने कहा हम डॉलर में अगर ऑयल की ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो इट्स अ बिग हिट फॉर अमेरिका। अल्लाह दुनिया का हामी व नासिर रहे। अशर अजीम साहब आपको बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद मी एंड इंशाल्लाह आई विश ऑल द बेस्ट फॉर यू मम्मा एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर यू बिजनेस एज वेल। और मैं आज भी आपकी खामोशी के साथ वकालत करती हूं, मैं आज भी किसी से कह रही थी कि आशर अजीम, ये दुनिया में बहुत आसान है किसी औरत के लिए उसके करेक्टर पे आ जाना और किसी शख्स के लिए उस पर करप्शन का इल्जाम लगा देना। आशर अजीम व्हेन ही केम टू कनाडा, इन्होंने डिग्निटी ऑफ वर्क के साथ हर काम किया, अ ग्रेट मैन। वो कहते हैं ना जो असली बुरा हुंदा ना, यकीन करें उसको तो आप देख भी नहीं सकते वो कहां पे है। दे आर लिविंग लेविश होम्स एंड वंडरफुल लाइफ, नोबडी नोज अबाउट देम वेयर दे आर। मगर
देखिए अरफा जी, ब्रीफ कमेंट इस पे मैं करूंगा। मुझे इन लोगों की जो भी कहते हैं ना, मुझे एक्चुअली आई गिव अ डैम
डैम हियर
एंड यू नो व्हाई। देखिए जिनका लॉजिक ही फ्यूज होना उसकी बात को आपने सीरियस क्या लेना, पागल लोग है ना। अब एक आदमी एक ही जुमले में ये कहता है कि ये करप्ट ट्रक ड्राइवर, अबे घामड़, तूने आज तक कभी किसी करप्ट आदमी को ट्रक चलाते देखा?
हाँ घामड़।
तो एक ही जुमले में तू इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो तुझसे बहस करने की ना कोई तुक है ना तेरी बात।
बड़ा दुख है सर, बड़ा दुख है, मगर यही तो इस कौम का अलमिया है। आज गुलाम रसूल शर तो बच जाएगा, मगर आप लोगों ने नहीं जागना। आपकी पार्टियां हैं, आपके लीडर्स हैं, और मुझे लगता है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो मामला भी अच्छे नहीं होंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर है। आशर अजीम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। गॉड ब्लेस यू, आई विश ऑल द बेस्ट फॉर यू मम्मा। स्टे ट्यून्ड, शाजिया विल बी हियर सून विद द न्यूज।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
770 AM दी नशरियात सुनन ते हालात हाजरा तो बा खबर रहने दे वास्ते न्यूज इंफॉर्मेशन एनालिसिस इलेक्ट्रिक गड्डियां दे विच ई आवाज ऑफिशियल एप या साडी वेबसाइट eawaz.com लोकल नंबर
6478724900। अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773। ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
ओए, एक ब्लॉकबस्टर प्लान बनाइए, पूरी मस्ती, मजे, नचना गाना हो जाए।
तैयार ने दिलजीत प्रॉपर पटोला पार्टी करने लई तुसी भी खिंच लो तैयारी रॉजर्स मोबाइल कस्टमर बनो फिर फॉर्म भर के 13 जुलाई नु रॉजर्स सेंटर ते हो रहे दिलजीत दोसांझ दे कॉन्सर्ट दीआं 2 टिकटां जीतण दा मौका पाओ उडीकण दी लोड़ नहीं हुणे स्विच करो कोई खरीद जरूरी नहीं पूरे नियम लई रॉजर्स गिव अवे / दिलजीत ते जाओ
क्विक ट्रक लूब हर साल दी तरह ट्रकर वीरां दा धन्नवाद करदे होए इस साल भी 20 जून नूं अपनी लैपरी लोकेशन ते ट्रक ऑयल चेंज ते देणगे $75 दा डिस्काउंट जी हां सही सुनया $75 दा डिस्काउंट फ्री ट्रक रेस ते फ्री बारबेक्यू तबे पहुंचो 20 जून नूं क्विक ट्रक लूब एग्जिट 579 ऑन हाईवे 401 ते पाओ $75 दा डिस्काउंट 519-622-0660 519-622-0660 क्विक ट्रक लूब लैपरी लोकेशन
Spear and McKay Menswear Clothing Fit Quality Value Ek Hi Jagah Par Canada made the only South Asian owned custom suiting and shirting company Burberry, Harry Rosen, Hugo Boss jaisi quality azmaish shart hai 100% Italian wood se bane suits sirf $249.99 mein aur bhi zabardast deals ke liye visit karein Spear and McKay Menswear 1535 Mirsad Drive Unit 1920 in Mississauga call 905-670-3388 www.spearandmckay.com
Valia Traffic Legal Services se janab RS Valia
Careless driving
Speeding ya phir accident
Fail to remain stop at the scene
Red lights ya phir seat belts
Permit drive without insurance
Racing, student driving ya phir caught while using phone
Speeding
RS Valia Aapki ticket se nijat dilwayenge aur aapke points bhi save karenge 905-454-2112
खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूं और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है
वेलकम बैक अगेन एंड सब 6:08 और 6 सेकंड हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और इस न्यूज के फौरी बाद आपने जो प्रोग्राम देखना है मुझे कई लोग मिले नमाज के बाद डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामों की जैसे रियाका भाई के प्रोग्राम के जिक्र किया आपने न्यूज का जिक्र किया आपने और उसके साथ साथ फिर ये जो प्रोग्राम हम लेके आए हैं आपके लिए क्रिकेट का जो क्रिकेट का ये स्पेशल प्रोग्राम है इसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया थैंक यू सो मच एंड आपका मैसेज मैंने शाजी तक पहुंचा दिया है शाजी जी एंड आमिर एंड दिशान ये प्रोग्राम करते हैं एंड बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया है मैं तो एक ही गेस्ट का वेट कर रहा हूं अभी तक नहीं आया है वो मैं और आमिर बहुत बेचैनी से उस गेस्ट का इंतजार कर रहे हैं इज अ वेरी वेल स्पोकन पर्सन अमिताभ शायद नाम है उसका एंड जी अमिताभ लास्ट नेम आई डोंट वांट टू प्रोनाउंस इट सो अमिताभ जी जो है अमिताभ जी आपको बहुत पसंद किया जाता है आपकी नॉलेज एंड आमिर इज वेरी इम्प्रेस्ड विद यू एंड सेम इज हियर आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद यू एंड आई वुड लव टू सी यू वेरी सून एनीवे न्यूज के जानते चलता हूं और न्यूज के लिए दिस पोर्शन ऑफ द न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा ये कहते हैं कि अब अगर आपने जीटीएचए में कुर्बानी की है तो उस कुर्बानी का तीसरा हिस्सा जो है वो आप मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा को प्लीज प्लीज दीजिए, आप मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा को, देर आर लॉट ऑफ नीडी पीपल दैट दे लुक आफ्टर, तो आप अपना मुस्लिम वेलफेयर को आप जरूर अपना कुर्बानी का तीसरा हिस्सा दीजिएगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप जा सकते हैं mwcanada.org, mw इज मुस्लिम वेलफेयर के इनिशियल्स, canada.org पर जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डेंटिस्ट्री और मिसेस सागर डॉक्टर नाजिया रहमान यहां पर होती है, कॉम्प्रीहेंसिव डेंटल केयर मॉर्निंग इवनिंग वीकडेज वीकेंड्स एंड सेम डे इमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स आपको मिल सकते हैं। डायरेक्ट बिलिंग टू इंश्योरेंस कंपनी एंड ईजी पेमेंट ऑप्शन के पास है डॉक्टर नाजिया रहमान हमारी और आपकी डेंटिस्ट। आप दो लोकेशन से आप सर्व करती हैं, दोनों लोकेशन ब्रैम्पटन के इलाके में, 9058721100 डॉक्टर नाजिया रहमान का फोन नंबर है। ओपन माइक कैफे आपको मिलेगा 1310 डंडा स्ट्रीट डंडास एंड उनके साथ डंडास के साथ साथ डिक्सी भी लगा लें तो ज्यादा बेहतर है, तो डंडास और डिक्सी के कॉर्नर पर आपको मिलेगा मिसागा के एरिया में ओपन माइक कैफे। पाकिस्तान के लजीज खाने खाने हो तो आप पहुंच जाइए ओपन माइक कैफे पर, 416-526-6800 ओपन माइक कैफे का फोन नंबर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट कैलेडन सब्जी फार्म कहते हैं कि अब उनके पास रात की रानी, जैस्मीन, तुलसी और इसके साथ साथ बीन्स, भिंडी, चिलीज, टोमेटोज, एग प्लांट्स, तो हर किस्म के इनके पास पौधे हैं, तो आप इन पर जाके वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा आपने अच्छी वाली खासुल खास सॉयल मींस खाद चाहिए हो, आपको पॉट्स चाहिए हो, डिफरेंट किस्म के गार्डनिंग टूल्स चाहिए हो, इंडियन तंदूर चाहिए हो आपको, भाई आपको जो भी चाहिए हो, पाकिस्तान का सामान, इंडिया का सामान यहां आपको मिलेगा। 12050 एयरपोर्ट रोड कैलेडन में ये वाके हैं, सुबह 8 बजे से रह के रात को 8 बजे तक ये खुले रहते हैं। 9058409000 इनका फोन नंबर है, कैलेडन सब्जी फार्म। ये थी आज की न्यूज, बखे की न्यूज इंशाल्लाह ताला कल मिलेगी आपको, और बस अब क्या कर सकते हैं, तो गीत बजाएंगे, गाने गाएंगे, ढोलकी बजाएंगे, आज ईद का दिन वैसे ही है तो आज तो डांस भी करेंगे। चलिए साहब, कोई तरसी निगाहों से देख रही हैं ये, तो इनको भी ले आता हूं मैं साहब अपने, टाइम इनका अभी है नहीं क्योंकि ये साहब से टाइम होता है, मगर मैं ले आता हूं, मैं नो प्रॉब्लम। शाजिया मलिक जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसी हैं आप?
सलाम मई जी, आपने वो जो जब से वो दड़ी बड़ी बनाई है ना, पितले से लग रहे हैं, क्या चक्कर है? पितले हो गए हैं कि ये दड़ी बनने से पितले हो गए हैं?
आप इसका दूसरा वर्ड होता है पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, यू नो,
नहीं नहीं आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव नहीं है, कुछ हो रही है,
इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू बी पॉजिटिव, मगर
नहीं मेरा क्योंकि ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है ही नहीं ना, मेरा ब्लड ग्रुप ही ओ नेगेटिव है।
हेलो
जी,
यही
तो मैं बी पॉजिटिव कैसे हो सकती हूँ,
यही तो चक्कर है,
ओ नेगेटिव है मेरा ब्लड ग्रुप।
पॉजिटिवली इसको कहते हैं कि देखें, आपने दाढ़ी बनवा ली, हाँ मैंने दाढ़ी बनवा ली अपनी, बाल कटवा लिए, हाँ जी बाल कटवा लिए, तो यू लुक वेरी हैंडसम।
अच्छा,
मगर ये कहना कि पितले लग, ये कोई तरीका कार है?
अच्छा मई भाई, आप मुझे बताएं, आप इधर बैठ के ये जो हर वक्त ये मेरे साथ आपने ये टकरे लगाए हुए हैं, ये क्या चक्कर है? मेरा और आपका कहीं पिछले जन्म का कोई जायदाद का झगड़ा तो नहीं है?
क्या टकरा
है ये जरा आप फाइंड आउट करें, मेरा और आपका कोई जायदाद का झगड़ा तो नहीं है?
पीछे कर देना सारी जायदाद,
एक और हिसाब
खत्म हो जाएगा,
एक और हिसाब, यानी ये यानी जितने आपने मुझे आज तक इल्जाम दिए हैं उसके अंदर ये एक और इल्जाम आ गया।
आमिर कह रहा है कि हमारे बर्तन वापस ले आए। आमिर आज एक बर्तन में से टूट गया, पता नहीं किसका टूटा है, तो वो बाद में पता लगेगा।
अच्छा, आपके दोनों मैंने बर्तन आपके बैग में डाल के आपके उसके ऊपर रख दिए मैंने, वो मेरा ही था जो टूटा है। अच्छा, ये इतने मेरे पे इल्जाम, तुम जी बर्तन चोरी करके लेके जा रही हो, तुमने मेरी जायदाद खाई है, मतलब ये क्या है, व्हाट इज दिस?
ये लिस्ट बढ़ती चली जा रही है।
अच्छा अच्छा अच्छा, ये लिस्टें आप छोड़ें, आप मुझे बताएं, वो जो लियारी से बड़ी मेरे लिए बोरी मंगवाई थी वो बोरी किधर गई है, पहले आप मुझे ये बताएं।
सारा पास्ट अपना जला दिया है।
नहीं नहीं, जला दिया लेकिन मैंने नहीं जलाया। आप मेरे से फिर 10 शर्तें जो हैं बुरी तरीके से हार गए हैं, और आपके ऊपर जो पिछले साल का $20,000 का कर्जा था ना, उस पे और $20,000 का कर्जा चढ़ गया आपका।
अच्छा ऐसा
करें, तो आप 40,000
वो मेरी जायदाद में से वो पैसा काट ले।
मजे भाई, क्यों खराब हो गया भाई
और कुछ
हूं आराम है
अब आराम जाके सो जाओ।
बस ठीक है माई भाई, चलो जी ठीक है ठीक है। यानी कि माई भाई आपने मेरे पैसे नहीं मुझे मोड़ने। जैसे वो कहते हैं ना कि वो जो पाकिस्तानी है उनकी जिंदगी में दो मोड़ आते हैं, एक पिशावर मोड़ और एक मेरे पैहे मोड़। तो आप मेरे पैहे नहीं मोड़ रहे मुझे।
पिशावर मोड़ सही है।
अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, मैं फिर उधर ही मिलेंगे ठीक है।
हाँ जी,
हाँ चलो ठीक है। अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय चांदनी विक्टोरिया बैंकवेट हॉल। जी इधर 1400 प्लस टाई बंदा बुला सकते हैं, आपको पता ही है, ऑब्वियस जो है और बिल्कुल यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है ठीक है जी। तो ये हैं, दे आर लोकेटेड एट 29353 रोड मिसिसागा, इनका नंबर है 6479653823 एंड ऑन्टारियोज लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे विलेज टेस्ट, इनके दो रेस्टोरेंट्स हैं जी। फैसल चड़ा साहब के पास जाएं, बड़े मजे के खाने बनाते हैं ये। दो इनके रेस्टोरेंट्स हैं, एक मिसिसागा में 4141 डिक्सी रोड और दूसरा है ओकविल में 2294 लेक शोर रोड। अगर आपको ऑर्डर डालना है मिसिसागा में तो कॉल करें 9052323663 एंड ओकविल में 9052262294। एंड जनाब पायल ज्वेलर्स लाए हैं दुबई से और सिंगापुर से बड़े जबरदस्त किस्म के डिजाइन। तो अगर आपको जो है अपने कोई भी आपका घर का इवेंट है, कोई जो है शादी मदी है छोटी मोटी या बड़ी भी, पतली है मोटी है जैसी भी है।
अरे मोटी शादी क्या होती है?
जिसमें लड़की मोटी होती है। okay. मेरी तरह की।
okay.
उसको कहते हैं मोटी शादी। है जी, तो आप पायल ज्वेलर्स पे जाएं, दे आर लोकेटेड एट 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव ब्रैम्पटन और इसका नंबर है 9057907879 ठीक है जी। अच्छा जी मैं पयान, आज जड़ा है ना बढ़िया बढ़िया खरबान और खरबों में सबसे बड़ा ये है कि अब जो है एटलीस्ट आपका जो गैंग है ना, यू आमिर एंड जीशान, गाड़ियां चोरी नहीं कर सकते आप। वो कह रहे हैं जीटीए के अंदर अब हमने स्कैनर्स लगा दिए हैं भाई।
जबरदस्त। अब मेरे ये मैं तो कहता हूँ कि वो लोग
ऑटो थेफ्ट
एक्सरे मशीन जो देखिए एक्सरे मशीन नहीं है।
यस यस,
तो इसको देखते ही जो हमारे टीवी देख रहे हैं, प्लीज अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप टीवी ऑन कर लें हमारा। ये जो है ये बोर्ड सर्विसेज के पास ये होंगी एंड दे कैन गो थ्रू इनसाइड डीप इनसाइड, जैसे इंसान के अंदर जाके एक्सरे देखते हैं ना, वैसे कंटेनर्स में से देख के पहचान जाएंगे कौन सी स्टोलन गाड़ियां हैं।
गाड़ियां ताकि ये जो कंटेनर्स में डाल के बाहर भेज देते थे ना गाड़ियां, तो अब ये नहीं भेज सकेंगे। तो आज इन्होंने अपना ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन कॉम्बैटिंग ऑटो थेफ्ट जो है ये लॉन्च किया है और इसके अंदर उन्होंने बताया जी कि हम अब पोर्ट्स के ऊपर और सीबीएसए को हम ये सारे स्कैनर्स दे रहे हैं ताकि कोई भी अगर गाड़ियां चोरी करके यहां से ले जाई जा सके।
वन ऑफ देम कॉस्ट 3.5 मिलियन डॉलर।
जी जी जी,
3.5 मिलियन की एक ट्रक है ये।
हाँ यस,
तो मगर ये ट्रक जो
बड़ा फायदा है ना, इसका फायदा है, इसलिए इसकी वजह यह है कि लोगों की जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की गाड़ियां चोरी हो रही हैं वो इनकी चोरी होनी अब बंद हो जाएगी। तो वो कहते हैं जी ये हमने इनको दिया है और हमने इनको कहा है कि जी ये फेडरल गवर्नमेंट जो है बड़े अरसे से और फेडरल जो एजेंट्स थे वो बड़े अरसे से ये कर रहे थे जो है वो इसके ऊपर बातचीत कर रहे थे और ये समिट इनका इनफैक्ट चल रहा था और उसके अंदर इन्होंने कहा जी कि ये बड़ा हमारा जो है कंसर्न है और उन्होंने कहा जी कि ये सिर्फ कनाडा का कंसर्न नहीं है बल्कि ये ग्रोइंग इंटरनेशनल कंसर्न भी है।
Exactly.
कि ये ऑटो थेफ्ट जो है ये बहुत ज्यादा हर किसी के मुल्क में हो रही है तो इसलिए उसका क्या है? तो उसके लिए जनाब ये मशीन, जैसे कि अभी माजिद भाई ने बताया कि 3.5 मिलियन की ये मशीनें जो हैं ये लेके गई हैं, जो कि बिल्कुल जैसे अभी वही माजिद भाई ने कहा कि जैसे आपकी बॉडी का एक्सरे वो कर लेते हैं और बता देते हैं कि भाई किधर प्रॉब्लम है, उसी तरह अगर कोई चोरी हुई भी गाड़ी कहीं पे भी वो लेके जा रहे हैं, कंटेनर में लेके जा रहे हैं, अकेली भी बॉर्डर से पास कर रहे हैं, फौरन ये डिटेक्ट कर लेगी उसको कि भाई ये चोरी की गाड़ी है। तो ये एक बहुत ही मेजर स्टेप जो है ये फेडरल गवर्नमेंट ने लिया और उसकी आज अनाउंसमेंट किया है। इसी तरह जी डरहम रीजनल पुलिस जो है उसने चार्ज किया कोई तकरीबन 100 के करीब लोगों को और उसमें बहुत ही ह्यूज ड्रग्स की क्वांटिटी जिसकी कीमत $600,000 थी उसको पकड़ा है अंडर प्रोजेक्ट मार्टिनी। अब जाहिर है कि इसका नशा होना था ड्रग्स का, तो उन्होंने प्रोजेक्ट मार्टिनी इसको कहा। उन्होंने कहा जी कि 5 वीक्स की ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और डाउनटाउन अशोवा के अंदर हम जो है ये हमने शुरू की थी क्योंकि बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे बिजनेसेस और रेजिडेंट्स के और उस पर फिर हमने टारगेट करना शुरू किया था इन लोगों को, जिसमें पता चला कि ये सिर्फ ड्रग्स की ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है माजिद भाई, वो कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर भी ये लोग इन्वॉल्व थे। सुपरिटेंडेंट रॉयन कॉनली जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे रिपोर्टर्स के साथ और उन्होंने कहा जी कि ये हमने जो है ये बहुत बड़ा डेंट मिला है इनको डरहम रीजन के अंदर, ये जो हमने गैंग पकड़ा है और हमने सीज किया है 3 किलोग्राम्स ऑफ मेटामेथाफीन और ओवर 1 किलोग्राम ऑफ कोकेन, 1 किलोग्राम ऑफ फेंटेनॉल और $30,000 जो थे इन कैश थे। पुलिस ने कहा कि हमने 11 सर्च वारंट्स जो थे एग्जीक्यूट किए थे, 113 क्रिमिनल चार्जेस हमने लगाए हैं 92 लोगों के ऊपर जो कि इस तरह के क्राइम्स पे, सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं बल्कि प्रॉपर्टी क्राइम्स, वायलेंट क्राइम्स, सेक्सुअल सर्विसेज ऑफर करने के क्राइम्स, ये सारे इनको जो है वो उसके लिए किया गया है चार्ज। तो ये वो कहते हैं जी ये बड़ा हमारा मेजर जो है वो बस्ट है, इसको कह रहे हैं बड़ा मेजर बस्ट है ये हमारा।
ऑफकोर्स 92 लोगों का चार्ज किया उन्होंने, 129 चार्जेस, 119 चार्जेस, 113 चार्जेस अगर लगे हैं तो इट इज अ बिग
जी जी।
एंड कांग्रेचुलेशन टू
द पुलिस,
धरम
रीजनल
पुलिस।
क्रिया की जैसे माजिद भाई आप बात कर रहे थे कि जी ये जो मई में होम सेल किए गए थे उनकी प्राइसेस कंपेयर टू 2023 जो हैं वो नीचे आई हैं, तो उसकी थोड़ी सी मैं और डिटेल दे दूं। इसके अंदर उन्होंने कहा जी कि जो सेल्स ग्रेटर वैंकूवर में हुई हैं वो मई के महीने में डाउन थी 19.8% कंपेयर्ड विद 2023। जीटीए के अंदर प्राइसेज जो थी वो डाउन थी 22.2% कंपेयर टू 2023। सेल्स इन एडमंटन अलबत्ता जो है वो कहते हैं 19.7% से ऊपर गई हैं कंपेयर टू May 2023, national average sales price for May was 699,117, down 4% compared with 2023 on month and month basis. उन्होंने कहा जी के होम सेल्स जो मई में थे वो डाउन थे 0.6% कंपेयर्ड विद अप्रैल। न्यू लिस्टिंग जो थी प्रॉपर्टीज की वो उन्होंने कहा जी के वो अलबत्ता ऊपर गई हैं 0.5%। इसके साथ साथ सिर्फ क्रिया की रिपोर्ट नहीं आई बल्कि सीएमएचसी की भी रिपोर्ट आई है और सीएमएचसी की रिपोर्ट के मुताबिक भी जो हाउसिंग स्टार्ट्स हैं उनके मुताबिक मई में वो क्लाइम किए थे 10% कंपेयर्ड विद अप्रैल ड्यू टू गेन्स इन मॉन्ट्रियल एंड टोरंटो। तो ये आज दो रिपोर्ट्स जो हैं दो बैक टू बैक आई हैं और एक कह रही है कि जी होम प्राइसेस जो होम प्राइसेस नहीं होम जो सेल्स थे
कंपेयर टू मई लास्ट ईयर 2023 कंपेयर टू दैट इट इज गॉन डाउन।
जी बिल्कुल नीचे गए हैं ऐसे ऐसे। अब जो एक बहुत बड़ी आज कनाडा के अंदर अनाउंसमेंट की है वो नोवो नॉर्डिक ने की है, ये आपको पता ही है कि ड्रग्स बनाते हैं इंसुलिन वगैरह। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग जिनको टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज होता है उनके लिए अच्छी खबर ये है कि अब उनको जो है इंसुलिन वंस अ वीक के बजाय सॉरी वंस अ वीक लेनी पड़ेगी डेली लेने के बजाय। ये जो
बिग ब्रेक थ्रू जी
जी
जी इट इज अ वेरी बिग
अवीकली
होता है
अवीकली। हाँ
तो इसी तरह उन्होंने ए डब्ल्यू आई क्यू एल
एल आई अवीकली
अवीकली जो है उन्होंने नाम दिया है उसको
डेली लेने के बजाय वंस अ वीक आप ले लो
वंस अ वीक। एंड आपको पता है कि इसकी जो इंसुलिन है वो भी ओरिजिनली कैनेडा ने उसका निकाला था तोड़
क्योर निकाला था
क्योर निकाला था।
जी जी
तो अब वीकली भी उन्होंने ही निकाला है कि भाई इंस्टेड ऑफ यू टेकिंग एवरी डे एंड जो लेते हैं खुदा खास्ता तो उन लोगों को आप देखें कि उनके लिए कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है
बहुत
इंस्टेड ऑफ डेली दे हैव टू डू इट ओनली नाउ एंड स्लोली स्लोली वीकली से 15 डेज से
मंथ आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो वो कहते हैं जी कि ये अवेलेबल होगा कनाडा के अंदर June 30th से और ये फॉर द फर्स्ट टाइम है कि ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और कनाडा दुनिया का फर्स्ट कंट्री होगा वैसे भी जिसमें ये इंट्रोड्यूस कराया जा सकेगा। ये जो दवाई है वीकली इसको अप्रूव किया था अर्लियर इन मार्च हेल्थ कनाडा ने और उन्होंने कहा था जी कि ये एडल्ट्स को जिनको टाइप वन और टाइप टू डायबिटीज है उसको आप दे सकते हैं। तो ये बड़ी ही मेजर जो है बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ये। जी बिल्कुल। अच्छा जनाब हुण एक स्यापा खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। एक जड़े ने उन्होंने ठंडा किया टीटीसी वाले नूं कि भई तुसीं स्ट्राइक ना करो, अब एलसीबीओ वाले कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक के ऊपर जा रहे हैं। हेलो जी हाँ जड़े बेचारे पीण वाले वो कहेंगे यार दुकाना बंद है हुण तुसीं की पीए गम पियो भाई गम पियो थोड़ा सा है ऐसा है। अच्छा जी ये जो ओंटेरियो पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज यूनियन है इसने अब कहा है जी कि 97% ऑफ एलसीबीओ जो वर्कर्स हैं वो इस फेवर में हैं कि हम स्ट्राइक के ऊपर जाएं। 8060 इसके एम्प्लॉयज हैं वो कहते हैं जी जिन्होंने इनमें से 86% जो मेंबर्स थे उन्होंने वोट किया था इसके लिए यानी कि ओवरवेलमिंग नंबर था। और ये 4 डेज तक चलता रहा था इनका बोर्ड। इसके अंदर वो कहते हैं जी कि एलसीबीओ वाले जो हैं वो अब उन्होंने कहा जी कि ये चूंकि अब हमारी यूनियन स्ट्राइक पे जा रही है तो वी आर पुटिंग मेजर्स इन प्लेस ताकि यानी कि बेचारियां शराबियां ज्यादा परेशानी ना हो। लेकिन वो कहते हैं जी कि अभी भी हम इनके साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं और अभी काफी सारा इस वीक में काफी दफा हमने मिलना है तो हमें लगता है कि हम ये कर सकेंगे, इनके साथ डील भी रिज्यूम कर सकेंगे जो कि खत्म हो गई थी मार्च के अंदर। तो उन्होंने कहा जी कि वो भी हम कर सकेंगे और इफेक्टिवली जो है इनका मसला भी हल कर सकेंगे। जनवरी के अंदर ही यूनियन जो थी उसने इनको बता दिया था एलसीबीओ वालों को कि अगर हमारी बातें ना मानी गई तो फिर हम मार्च 31 के बाद कभी भी कर सकते हैं।
लोगों को बहुत इफेक्ट होगा और हाँ। बहुत बहुत सारे लोग बड़े अपसेट होंगे गवर्नमेंट पे।
जी जी जी,
हम लोग तो शरीफ आदमी है मगर इसको भी बड़ा इफेक्ट होगा उसका कि भाई आपने
भाई हमने हल बता तो दिया कि अगर शराब नहीं मिल रही आपको तो गम पियो भाई,
गम पियो।
हाँ बिल्कुल बता तो दिया है लोग साढ़े को जुगाड़ा ही जुगाड़ा ने साढ़े संपर्क करें, हमारे से संपर्क करें। ठीक है अच्छा जनाब, जो है गर्मी अब कड़ाके की पड़ना शुरू हो गई है और लोगों को ना सिर्फ ब्रैम्पटन में टोरंटो में बल्कि जीटीए पूरे के अंदर ही अब कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा हाई हो गया टेम्परेचर, 32 डिग्रीज को चेक कर रहा है, टच कर रहा है लेकिन इट विल फील लाइक 41 डिग्री सेंटीग्रेड विद ह्यूमिडेक्स। वो कहते हैं हॉट हेजी ह्यूमिड एयर जो है वो ये पूरे का पूरा वीक जो है डोमिनेट करेगी। एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कनाडा उन्होंने बड़ी वार्निंग्स दी हैं, उन्होंने कहा जी कि जिन लोगों को जो है जो वल्नरेबल हैं उनके लिए हेल्थ रिस्क भी है। उन्होंने कहा जी कि इसके अंदर है ओल्डर एडल्ट्स, इन्फेंट्स, यंग किड्स, प्रेग्नेंट वुमेन, पीपल विद फिजिकल एंड मेंटल इलनेसेस, उनको हम सबको वो कहते हैं जी कि उनको जो है बाहर ज्यादा अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, ठंडी जगह पर रहना चाहिए। इसके साथ साथ जो ब्रैम्पटन और टोरंटो के अंदर जो स्प्लैश पूल्स वगैरह हैं वो भी खोल दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है एनवायरमेंट कनाडा एडवाइज कर रहा है कि आप जो फिजिकल एक्टिविटी आउटडोर्स है उसको बिल्कुल या तो अवॉइड ही करें पूरी तरह से या बिल्कुल रिड्यूस कर दें और पानी बहुत ज्यादा पिए, स्टे हाइड्रेटेड, और जो पेट्स और बच्चे हैं जिनको कि आप पार्क व्हीकल्स में छोड़ देते हैं उनको ना छोड़ें भाई।
एक और चीज वेरी माइनर सी चीज है शादी जी, और ये कि वी आर ऑल पार्ट ऑफ इट, और उसमें ये कि हम बाज दफा जब बहुत सख्त गर्मी हो रही है दोपहर के वक्त मैं कई लोगों को देखा है बाहर बैकयार्ड में और फ्रंट यार्ड में खड़े होकर पानी दे रहे होते हैं ना, दैट इज वेरी उस वक्त हीट का अटैक होता है।
बिल्कुल
डोंट डू इट,
शाम में करो,
फर्स्ट इन द मॉर्निंग आप कर लें,
फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग या शाम में करें, लेटर इन द आफ्टरनून। हाँ बिल्कुल ऐसे, ये जो 12-1 बजे का वक्त होता है दैट इज वेरी डेडली, बहुत बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा जी, पुटिन साहब पहुंचे हुए हैं, नहीं पहुंचेंगे नॉर्थ कोरिया में और वहां पे ये बातचीत करेंगे जो नॉर्थ कोरियन लीडर हैं किम जोंग, उनको इनका दौरा जो है जून 18-19 के बीच में होएगा और उसके बाद जो है ये वियतनाम जाएंगे पुटिन साहब, जून 19-20 को वहां पे होंगे। नॉर्थ कोरिया का ये विजिट जो कर रहे हैं ये कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर जुलाई 2000, और इनको जो दावत दी थी किम जोंग उनने दी थी जिस वक्त ये उधर गए थे, इनके रशिया गए थे, तो रशिया में जब इन्होंने विजिट किया था जनवरी में तो उन्होंने कहा था कि जी आप हमारा भी विजिट करें। साउथ कोरिया के जो वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं किम होंग यून, उन्होंने आज एक इमरजेंसी कॉल की है यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर्ट कैम्बल को और उनको बताया जी कि हमें बड़ा खतरा है इस मीटिंग का क्योंकि हमें लग रहा है कि यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस की ये दोनों ही पार्टीज जो हैं वो वायलेशन कर रही हैं और हमें लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया वेपन्स दे रहा है रशिया को कॉन्स्टेंटली और इसीलिए यूक्रेन की वॉर जो है वो ठंडी नहीं पड़ी है, एज इफ रशिया दे कोलते वेपन्स है ही नहीं ना, मतलब नॉर्थ कोरिया से बड़ा डिपेंड करता है, पता नहीं नॉर्थ कोरिया की कितनी टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई हुई है, इनके पास तो इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं ऑलरेडी। अच्छा जी बहरहाल जी, साउथ कोरिया कहता है कि नहीं ये दे रहे हैं इनको रशिया को वेपन्स, और इसके ऊपर जाहिर है कि आज वेस्ट जो है उसने भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर आवाज उठाई है। यूएन के जो मॉनिटर्स हैं उन्होंने कहा है कि जी हमें लगता है कि जो यूक्रेनियन सिटी के ऊपर एक मिसल एटलीस्ट जो मारा गया था एट द बिगनिंग ऑफ दिस ईयर वो रशियन था, जबकि यूक्रेन कहता है कि हमने इस तरह के 50 मिसल्स जो हैं वो डिटेक्ट किए थे जो कि रशियन मेड नहीं थे और नॉर्थ कोरियन मेड थे। मतलब एक कहानियां तो तुम बैठ के अपने जितनियां मर्जियां बनानी हैं बना लो, जाहिर है कि दुनिया का नैरेटिव एक ड्राइव अप करने के लिए तो वो जी 50 यानी कि रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया से लेगा, बेचारा अभी तो नॉर्थ कोरिया ये चीजें डेवलप करना शुरू हुआ है, रशिया तो कब से ये डेवलप कर रहा है चीजें, तो ये कहते हैं, वो यूनाइटेड नेशंस कहता है, एक तो यूक्रेन कहता है जी 50 हमने जो है वो मिसाइल्स डिटेक्ट किए हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। तो ये जनाब आज की जो खबर थी इसने काफी आज एक्स के ऊपर भी अगर आप ट्रेंड देखें तो काफी जो ये यूरोप की तरफ का एक्स है उसके ऊपर आप ये काफी आपको ट्रेंड नजर आएगा कि उसके अंदर ये काफी बात की जा रही है इनके विजिट की, पुतिन साहब के विजिट की नॉर्थ कोरिया। अच्छा जनाब, अभी जो बात हो रही थी निखिल गुप्ता साहब की कि जिनको के अब एक्स्ट्राडाइट किया गया है यूएस के अंदर, क्योंकि इनके बारे में ये कहा गया था कि ये एलिजिबली प्लॉट कर रहे थे गुरपतवंत सिंह पन्नू को, जो कि सिख फॉर जस्टिस के लीडर हैं, उनको अमेरिका में ही मारने के। ये आज मैनहट्टन फेडरल कोर्ट जो है उसमें ये हाजिर हुए हैं, और यूएस अटॉर्नी डेमियन विलियम्स जो हैं उन्होंने नवंबर में कहा था जी कि ये जो कॉन्स्पिरेसी है इंडिया की कि जिसमें कि उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक अमेरिकन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन को मारने की कोशिश की है, जो कि एक सॉवरन सिख स्टेट की बात कर रहा है और ये बिल्कुल पीसफुली कर रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डेमियन विलियम्स ने यह भी कहा था कि ये इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, और ये हर उस तरह का आदमी जो कि अपना फुटप्रिंट अमेरिकन सॉइल पे बढ़ा रहा है और हमारे लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है, या तो यूएसए में या इवन बाहर भी अगर किसी अमेरिकन को मारने की वो किसी और मुल्क में भी कोशिश करता है तो उसकी पूरी एक इन्वेस्टिगेशन बिठाने की जरूरत है। गुप्ता साहब जो है वो बड़े अरसे से चेकोस्लोवाकिया के अंदर थे और वहां पर उन्होंने एक बेल भी डाली, उन्होंने एक प्ली भी डाली थी कि मुझे अमरीका में शिफ्ट मत करो, और लेकिन फिर भी उन्होंने उनको जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो थी चेकोस्लोवाकिया के बीच में और यूएस के बीच में उसके अंडर इसको जो है वहां पे बुलाया गया है। आपको पता ही है कि टूडो साहब ने अलेज किया था कि जो हरदीप सिंह निजर जिनको के मार दिया गया था जून 18 को सरी के अंदर, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमें फुटप्रिंट्स जो हैं वो मिलते हैं इंडियन गवर्नमेंट के अलेजली, जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ा इसका बुरा मनाया था। उसके बाद आरसीएमपी जो है उसने अरेस्ट किया था करण ब्रार जिसकी की उम्र 22 इयर्स है, कलमप्रीत सिंह उसकी भी उम्र 22 इयर्स है, और करणप्रीत सिंह 28 इयर्स की, ये सारे एडमंटन के रहने वाले थे। इन सबको ये जो हरदीप सिंह निजर है उनके कत्ल के सिलसिले में एलएचडी इनको पकड़ा गया था। ये जो थी गुप्ता साहब था इनके बारे में कहा गया था कि जी इसने इसके साथ इन टच थे इंडियन कोई गवर्नमेंट के एलएचडी बंदे, और उन्होंने इसको कहा था कि भई तुम जो है हायर करो किसी कोई बंदों को इसको पन्नू को मारने के लिए, और फिर जिस बंदे ने हुआ ये था कि जिस बंदे ने इसको फिर कांटेक्ट किया था जिसने कहा था कि जी मैं मारूंगा इसको पन्नू को, वो अमेरिकन इंटेलिजेंस का ही बंदा था। वो अमेरिकन इंटेलिजेंस का बंदा जब उसके पास पहुंचा, उसने सारी इन्फॉर्मेशन इससे निखिल गुप्ता से ले ली, उसके बाद जाके उसने एफबीआई को बताया कि भई ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मेरे पास है, उसके बेसिस पे फिर एफबीआई ने इसको कहा था कि हम इसको पकड़ेंगे जब ये भाग के चेकोस्लोवाकिया पर चला गया था, और वहां पे इसको यानी कि चेक रिपब्लिक जो है वहां पे इसको लास्ट ईयर फिर अरेस्ट किया गया था, और अब इसको जो है यहां पे लाया गया। तो ये सारे का सारा बड़ा सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क था, और जो है इस सिलसिले में आपको पता ही है कि सिर्फ कनाडा और अमेरिका नहीं, पाकिस्तान तो बड़े अरसे से कह रहा है, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी कहा था कि हमको भी ट्रेसेस मिले हैं कि जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है वो जो लोग उसको पसंद नहीं होते हैं उनको मरवाती है ये यहां पे फॉरेन लैंड्स में। तो ये चीज अब जो है बहुत बढ़ती चली जा रही है, और अब निखिल गुप्ता का जिस वक्त ये ट्रायल शुरू होएगा तो जाहिर है कि बहुत सारी बातें सामने आएंगी। आपको पता ही है कि यूरो 2024 जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन जर्मनी के अंदर ये पहले ही बड़ा थ्रेट जो लेवल था हाई था, उसी के अंडर जो है एक बंदे ने पुलिस के ऊपर पिक एक्स जो है उससे हमला करने की कोशिश की, जिसकी की वजह से जर्मन पुलिस ने उसको गोलियां मारी। ये उस वक्त हुआ जिस वक्त के यूरो 2024 का फुटबॉल फैन परेड जो है वो सेंट्रल हैम्बर्ग में जा रही थी, और ये जो सेंट पुली का डिस्ट्रिक्ट है उस वक्त हुआ जिस वक्त पोलैंड और नेदरलैंड्स के जो प्लेयर्स थे प्ले जो था उनका गेम होने वाली थी, और यहां पे हैम्बर्ग के वॉल्स पार्क स्टेडियम में, तो उस वक्त ये इस आदमी ने पुलिस के ऊपर अटैक किया और इसको फिर गोलियां मारी गई, लेकिन इसको फिर हॉस्पिटल में लेकर गए थे और इसको जो है फर्स्ट एड दी जा रही है। तो अगर आपने आज ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का भी देखा है तो उसने भी अपने लोगों को कैनेडियंस को यहां पे यूरोप में ट्रेवल करने से मना किया है। जर्मनी जो है ये टूर्नामेंट जो है उसने शुरू किया है जून 14 से, और यूरोप के सारे ही जो यूरो 2024 के जो यूरो कप के जो मतवाले हैं वो सारे ही इधर पहुंचे हुए हैं, तो इनके जो सिक्योरिटी इंतजाम हैं तो बड़े सख्त, फिर भी इसमें से ये आदमी जो अभी तक कुछ बताया नहीं है उन्होंने जर्मन गवर्नमेंट ने कि ये जो था इसको टेररिज्म ये कंसिडर करेंगे या क्या, अलबत्ता ये जैसे ही इन्वेस्टिगेशन अनफोल्ड होगी तो फिर हम आपको भी बताएंगे। लॉस एंजलिस में जनाब बहुत ज्यादा वाइल्ड फायर्स जो हैं वो फैलना शुरू हो गई हैं और इस सिलसिले में कोई तकरीबन 1200 लोगों को यहां से जो हंगरी वैली आउटडोर रिक्रिएशन एरिया है यहां से इवैक्यूएट किया गया है। इस फायर ने तकरीबन 12,000 एकर्स का एरिया जो है उसको जला दिया है। 400 फायर फाइटर्स, 70 फायर ट्रक्स और 2 बुलडोजर्स जो है इसको आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉस एंजलिस काउंटी जो है वो कह रही है कि इस साल की ये पहली मेजर आग जो है ये लगी है और ये तकरीबन 23 स्क्वायर मीटर्स के ऊपर ये फैल गई है। अभी तक इंजरीज की कोई भी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं लेकिन इन्वेस्टिगेशन अंडर वे है। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फायर प्रोटेक्शन ने कहा है कि भाई हम आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन स्ट्रांग विंड्स और ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत मुश्किल हो रहा है इसको बुझाना। दो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बिल्कुल बुरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं और नॉर्थ कैरोलिना का जो स्मॉल वाइल्ड फायर्स हैं वो भी चलते चले जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिसकी की वजह से कॉन्स्टेंटली गवर्नमेंट जो है वो वार्निंग्स दे रही है। ये जो एरिया है ये तकरीबन लेक सुमोना का एरिया है और उधर से भी कहा गया है कि लोगों को निकलने को। इसके अलावा एक पॉइंट फायर है जो कि नॉर्थ ऑफ सैन फ्रांसिस्को में चल रही है जिसने कि एक स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बर्बाद किया है, तो उधर से भी कहा है लोगों को कि भई आप इवैक्यूएट करें और फायर्स जो हैं इनको करने की कोशिश की जा रही है कंटेन। तो अब पता चलेगा जनाब ये कंटेन हुई है कि नहीं। नॉर्वे ने आज एक बड़ी मेजर अनाउंसमेंट की है और उन्होंने कहा जी कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज जो है UNRWA उसके लिए हम फंडिंग जो है आप बढ़ा रहे हैं। लेकिन उनका बड़ा कंसर्न है कि पीए की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बड़ी खराब होती जा रही है। एंड बीथ तिविनरियम मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है उन्होंने कहा जी कि हम अपना जो बजट है वो बढ़ा रहे हैं जो 25 मिलियन डॉलर्स का टू UNRWA और उसके अंदर हम एडिशनल 9 मिलियन जो है वो देंगे। तो ये 36% जो है इंक्रीज है टू सपोर्ट पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है और इसके अंदर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज जो हैं उनको बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर इनके जो हैं नॉर्वे के एस्पन बर्थ एड, उन्होंने भी वार्न किया है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं और आने वाले महीनों में ये बिल्कुल कलैप्स कर जाएगी। यानी उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपने इनका ख्याल ना किया तो शायद हम मैस जो है वो ओवर पावर कर लेगा। तो बहरहाल काफी ये आज नॉर्वे की तारीफ की गई है जो इन्होंने UNRWA का फंडिंग जो है वो बढ़ाया है। चाइना और फिलीपींस जो है जी अब उनके अंदर काफी ज्यादा टेंशन बढ़ती चली जा रही है क्योंकि हुआ ये है कि जो इनके दोनों के जो शिप्स थे वो टकरा गए हैं साउथ चाइना सी के अंदर। चाइना की कोस्ट गार्ड ने कहा जी कि फिलीपींस का ये सप्लाई शिप जो था ये एट फॉल्ट था और ये आके जो चाइनीज वेसल है उससे आके कोलाइड उसने किया है। फिलीपींस ने इसको रिजेक्ट किया है। चाइना ने कहा जी कि फिलीपींस को के शिप को काफी वार्निंग्स दी गई थी लेकिन वो बिल्कुल रुक नहीं रहा था और बहुत डेंजरसली और अनप्रोफेशनली आगे आगे की तरफ चलता जा रहा था और फाइनली आके उसने फिर चाइनीज शिप को हिट किया। इसके अंदर यह बताया जा रहा है कि कोई भी इंजर तो अभी तक नहीं हुआ है लेकिन यह भी पता नहीं चल रहा है कि जो वेसल्स हैं दोनों उनको कितना बड़ा डैमेज आया है। चाइना ने कहा जी कि ये जो है इसमें जो हमारा शिप था ये जो पूरा ये जो है एरिया साउथ चाइना सी का ये हम क्लेम करते हैं तो हमारा शिप जो है इसके अंदर रह सकता है। फिलीपींस ने कहा जी कि ये जो रेनाय रीफ एंड चाइनाज नाशा आइलैंड्स ये चाइना कहता है जी कि ये डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं और फिलीपींस इस चीज को नहीं मानता है। उन्होंने कहा जी फिलीपींस ने कि ये जो कुछ भी बातें चाइना कर रहा है ये लोगों को मिसलीड कर रहा है इसमें और चाइना के बहुत ज्यादा जो है एग्रेसिव एक्शन है इस सी के अंदर। ये वो कहते हैं जी कि हम अपना शिप जो है फिलीपींस वाले एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर चला रहे थे लेकिन चाइना तो मानता ही नहीं है ना, वो कहता है पूरा सी मेरा है। ये जो सी है इसके ऊपर क्लेम करते हैं वियतनाम भी, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनाई भी। लेकिन इसके साथ साथ चाइना के लिए एक अच्छी चीज ये हुई है कि जो ऑस्ट्रेलियन हैं प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज, उन्होंने आज वेलकम किया चाइनीज प्रीमियर ली क्वांग को वहां पे कैनबरा में, और उन्होंने कहा जी कि ये जो दिस वाज द फर्स्ट विजिट ऑफ अ चाइनीज प्रीमियर इन 7 ईयर्स, उसमें जो बहुत ज्यादा स्वीपिंग टैरिफ्स लगाए हुए थे चाइना ने इनकी वाइन, कोल, बार्ले और बहुत सारी चीजों पर, वो उठाए हैं, तो उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ जो है वो सुधार आया है तालुकात में, लेकिन और चाइना के साथ जो रीजन के लोग हैं जैसे कि फिलीपींस और ताइवान, उनकी जरा लड़ाई अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। एंड जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय डॉक्टर फियाज कुरैशी। डॉक्टर फियाज कुरैशी की आपको पता ही है कि 3 क्लिनिक्स हैं, 2 मिसिसागा में और 1 स्कार्ब्रो में। मिसिसागा में या जो उनके क्लिनिक्स हैं उनका नंबर है 9052325678, और जो स्कार्ब्रो में उसका नंबर है 4167579999। बहुत जबरदस्त किस्म की जो है ये डेंटल सर्विसेज देते हैं तो एक्सक्यूज मी, तो डॉक्टर फियाज कुरैशी जो है वो कहते हैं मेरे पास आप आए और आप जो है अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जनाब इसके अलावा राजा बादशाह जी वो कहते हैं जी कि मैं भी आपको राइट इंश्योरेंस देता हूं, ऑटो की भी और होम भी, तो आप मेरे पास आए। राजा बादशाह जो है ऑल स्टेट में एजेक्स एजेंसी के साथ हैं और एजेक्स में है, यानी ऑल स्टेट की जो एजेक्स में ब्रांच है उसके साथ हैं। वो कहते हैं जी अगर आपके पास 2 गाड़ियां और 1 घर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके बहुत सारे पैसे बचाऊंगा, या अगर आपके पास 1 गाड़ी और 2 घर हैं तो उसमें वो कहते हैं जी मैं ज्यादा आपके पैसे बचा सकता हूं। तो राजा बादशाह जी जो है उनसे संपर्क करें, इनका नंबर है 6472903773 इनका नंबर है। पाकिस्तान के अंदर रनस लाउला जो है एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स और पीएमएलएन के पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कहा है जी कि हम इंश्योर कर रहे हैं कि हम पीपीपी के साथ बात करें। आपको पता ही है कि पीपीपी ने बहुत ज्यादा एतराज किया था कि भई हमारे साथ जो है बातचीत नहीं की जा रही है बजट के सिलसिले में, और उस सिलसिले में फिर जो शहबाज शरीफ साहब थे उन्होंने कहा था जी कि पीपीपी के जो लीडर्स हैं उनके साथ आप जाके बात करें। आपको पता ही है कि हमने आपको लास्ट वीक बताया था कि जून 12 को जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगजेब साहब, उन्होंने नेशनल असेंबली में बजट 2024-25 पेश किया था और पीपीपी ने कहा था कि हम इसको बायकॉट करेंगे, लेकिन फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं साद डार साहब उनको कहा गया कि आप इनको रूठे हुओं को बना के लाएं, तो कुछ जो इनके लोग थे पीपीपी के उन्होंने आके ये अटेंड किया था, अदरवाइज वो कह रहे थे कि हम इसको बायकॉट करेंगे। सनावला साहब ने कहा जी कि ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी इनको नहीं बताया था अपने एलाइज को, हमने इनको कुछ बताया था, हाँ ठीक है उनके कोई कंसर्न्स हैं और हम उनके साथ फिर भी कंसल्टेशंस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमने प्रपोजल्स दिए हैं ये सिर्फ अभी प्रपोजल्स हैं, ये पूरी तरह से अभी जो है इम्प्लीमेंट हम नहीं कर रहे हैं, जो वो प्रपोजल्स पीपीपी वाले देंगे वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे और फिर फाइनलाइज करेंगे बजट को, और क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि जून के एंड तक ये बजट जो है आ जाए ताकि 1 जुलाई से ये शुरू हो जाए, तो वो कहते हैं जी अभी हमारे पास कुछ टाइम है और उसमें जो है हम पीपीपी के साथ बात कर लेंगे। पीटीआई पार्लियामेंट्री जो लीडर हैं एनए नेशनल असेंबली में जैन कुरैशी, जो कि आपको पता ही है कि बेटे हैं शाह महमूद कुरैशी के, वो आज रिपोर्टर्स के साथ मुल्तान के अंदर बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी उम्मीद है कि ईद के बाद मेरे वालिद साहब अब जो है वापस आ जाएंगे, मेरे वालिद साहब ने बड़ी सेक्रीफाइस दी। आपको पता ही है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब साइफर केस में जो है लास्ट अगस्त से जेल में हैं, हालांकि उनको बेल मिल गई है साइफर केस में भी और ये जो मई हैम हुआ था उसमें भी और आजादी मार्च में भी, लेकिन फिर भी इनको जो है अभी तक जेल के में रखा हुआ है। तो आज उन्होंने वही कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे वालिद साहब बहुत जल्दी जो है वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा जी कि ये जो इसके अलावा हमारे वर्कर्स जिनको इम्प्रिजन किया गया है बिला वजह उनको भी छोड़ने की जरूरत है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा जी कि ये कहा जा रहा है कि पीटीआई के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो रिफ्ट्स आ गए हैं, कोई रिफ्ट्स नहीं है, हम सब लोग जो हैं एक हैं, हमारे पीटीआई के लीडर्स के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने जनाब जो मार्टर्स हैं पाकिस्तान आर्मी के उनको बहुत ज्यादा रिच ट्रिब्यूट्स दिए। इन्होंने जो थी ईद की नमाज यहां पे पड़ी एलओसी के पास हाजी पीर के सेक्टर के अंदर, और उन्होंने कहा जी कि हम जो कश्मीरी हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में उनके साथ हम खड़े रहेंगे और उनको हमेशा हम सपोर्ट करेंगे अंडर द रेजोल्यूशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और उन्होंने कहा जी कि आप अपना मुराल और डेडिकेशन जो है वो अपनी मदरलैंड के लिए हाई रखें, और आपकी जो सेक्रीफाइसेज हैं उसको कौम जो है बड़ी कदर से निगाह से देखती है। और उन्होंने कहा जी कि ये जो अभी नए इलेक्शंस हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसके अंदर जो कश्मीरियों को बड़ा विक्टिमाइज किया जा रहा है और एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ भी किया जा रहा है, इसको जो है वो खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने कहा जी कि इनके ये जो टैक्टिक्स हैं इंडिया के, ये ज्यादा नहीं चलेंगे, ये हर वक्त फॉल्स फ्लैग्स जो हैं वो देते रहते हैं और ये उनका यूजुअल पॉलिटिकल टूल बन गया है पाकिस्तान को बैड नेम देना। तो उस पर आप ध्यान ना दें, आप अपने प्रोफेशनल जो ड्यूटीज हैं उनके ऊपर ध्यान दें। अच्छा जनाब, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर है। आपको पता ही है कि गूगल ने अपना एक चैट बॉक्स बनाया था जेमिनी, और ये जो था ये जेमिनी जो था इसको दिसंबर 2023 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये जेमिनी जो है उससे पूछा गया है कि भाई पाकिस्तान के जो पॉपुलर लीडर्स हैं नवाज शरीफ, इमरान खान, बिलावल भुट्टो, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। अब ये जो जेमिनी है ये कहता है जी कि मैं बिल्कुल अनबायस्ड हूं और मैं बिल्कुल किसी की साइड नहीं लेता हूं। तो उससे कुछ लोगों ने पूछा है कि नवाज शरीफ के बारे में आप क्या कहते हो। जेमिनी ने नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जी कि ये जो है शरीफ साहब बड़ी कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है और इनके सपोर्टर्स जो हैं इनसे कुछ काम चाहते हैं, तो नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो उस तरह के जो काम हैं वो करें। इसके अलावा इन्होंने पूछा इमरान खान साहब के बारे में, इन्होंने इमरान खान की सारी ही अच्छी बुरी जो है वो चीजें बता दी। फिर इन्होंने बताया पूछा इनसे बिलावल भुट्टो के बारे में, तो उन्होंने कहा जी कि बीबी जरदारी जो है वो भी बड़े पॉपुलर लीडर हैं। तो जब उनसे जेमिनी से पूछा गया कि इमरान खान और बीबी जरदारी जो हैं उनके बारे में आप जो लोग बड़ी खराब बातें करते हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा जी कि ये दोनों जो हैं पॉलिटिकल लीडर्स हैं और इनके खिलाफ गंदी बात करना जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये इनका फन बनाना जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन पता ये चला कि जेमिनी जो था जेमिनी जो है उसके पास इमरान खान के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है कंपेयर टू नवाज शरीफ एंड बीबी जरदारी। और खान साहब के बारे में तो उसने ये भी कहा कि आप इसका पॉलिटिकल सेटायर ना बनाएं क्योंकि इसके जो हैं बहुत सारे पैशनेट फॉलोअर्स हैं और अगर आपने इसको डिसरिस्पेक्ट किया या इसको ऑफेंड किया तो इसके चाहने वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा उसका बुरा मना जाएंगे। तो लोगों को बड़ी हैरत हुई कि भाई वैसे तो ये जेमिनी जो चैट बॉट है गूगल का ये कहता है कि मैं बिल्कुल अनबायस्ड हूं और तो फिर ये तो बड़ा बायस्ड ओपिनियन दे रहा है। तो बहरहाल वो कहता है कि नहीं मैं तो आपको सच बता रहा हूं। तो ये ऐसे है हिंदुस्तान के अंदर जी, जो बीजेपी और कांग्रेस जो है उसकी लड़ाई बिल्कुल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशंस जयराम रमेश जो हैं उन्होंने आज फिर मोदी जी की गवर्नमेंट जो है उसको बहुत ज्यादा उस पर एतराज किया। उन्होंने एक्यूज किया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसर्ट को और उन्होंने कहा जी कि ये आरएसएस की एक अफिलियट बनती चली जा रही है और हिन्दुस्तान का जो संविधान है, जो हिन्दुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली ये हमले करती जा रही है। ये बातें उन्होंने उस वक्त की कि जिस वक्त एमसर्ट ने एक पूरा जो सेक्युलरिज्म के ऊपर चैप्टर था ग्रेड 11 की जो पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक थी उसको रिवाइज किया है और उसके ऊपर उन्होंने कहा है जी कि ये बहुत सारी जो एक जो पॉलिटिकल पार्टी है, सिर्फ एक के बारे में उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जी एक पॉलिटिकल पार्टी एक तबके को खुश करने के लिए और वोट की खातर जो है अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो है वो चला रही है, एज अ रिजल्ट हमारी सेक्युलरिज्म के अंदर उसके ऊपर भी नजर रखने की जरूरत है। इससे पहले कि हम आपको एक्सप्लेन करें कि ये क्या है, अपने एक्स पे जो रमेश साहब ने कहा है वो हम आपको बता दें। उन्होंने कहा जी कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी थी एमसर्ट और इसको ऑटोनोमस बॉडी ही रहने दिया जाना चाहिए था अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये कोई नागपुर या नरेंद्रा काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग नहीं है और ये जो है एमसर्ट इसको बिल्कुल जो है खराब किया जा रहा है जानबूझ के और इसके स्टैंडर्ड्स खराब हो गए हैं और ये बिल्कुल फेल हो गई अपना ऑब्जेक्टिव जो था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उसको मीट करने के लिए। एमसर्ट जो है उसके बारे में उन्होंने रमेश साहब ने कहा कि ये बिल्कुल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं रहा है और सिंस 2014 आरएसएस का अफिलियट बन के रह गया है। इन्होंने जो ग्रेड 11 का ये जो पॉलिटिकल साइंस की सारी रिवाइज की है टेक्स्ट बुक तो इसके अंदर उन्होंने आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म जो है उसको क्रिटिसाइज किया है। सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा था कि जो सेक्युलरिज्म है हमारे मुल्क में वो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर है तो उसको खत्म करने की कोशिश ना करें। तो ये जो अब रिवाइज किया गया है जो इन्होंने कहा है जी कि एक पार्टी अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए एक जो तबका है उसको بڑا فیور دے رہی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ کانگریس کے اوپر جو ہے انگلیاں اٹھائیں کہ بھئی تم جو ہے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے ووٹس کے لیے جو ہے وہ ہندوؤں کو پیچھے چھوڑتے ہو، جو کہ مودی جی کا اس دفعہ الیکشنز میں مدعا بھی رہا تھا۔ اب جبکہ یہ بات آئی کہ انہوں نے جی یہ چیپٹر سارے کا سارا ریوائز کر دیا ہے، تو اس کے اندر سہاس پالشیکر اور یوگندر یادو جو ہیں وہ جو تھے انہوں نے ہیلپ کیا تھا ٹو ڈیولپ دا پولیٹیکل سائنس ٹیکسٹ بکس، جس کے اندر گریڈ 9 سے گریڈ 12 تک، جس میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ سیکولرزم کے اندر سب کوئی ایکول ہیں اور ہم کسی جو ہے وہ رنگ نسل کی بنا پہ بھید بھاؤ نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ جو ڈائریکٹر ہیں انسرٹ کے ڈی پی سکلانی، ان کو کہے امیڈیٹلی یہ جو گریڈ 9 سے گریڈ 12 کی بکس ہیں ان میں سے ہمارا نام جو ہے فوراً ختم کیا جائے، اس لیے کہ آپ نے جو ہے ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی ہے فیکٹس کو اور سیکولرزم کو، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا نام اس ان بکس کے اوپر جو ہے وہ رہے۔ تو یہ جناب آج کی بڑی گرما گرم جو ہے وہاں پہ بحث چلتی رہی ہے۔ ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے ان دا ہندوستان کے اندر، جس میں کہ ایک فریٹ ٹرین جو تھی اس کی ٹکر ہوئی ایک اسٹیشنری پیسنجر ٹرین کے ساتھ، جس کی کے وجہ سے 15 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور 54 لوگ جو ہیں وہ انجر ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ ہوا ہے ویسٹ بنگال کے دارجلنگ کے اندر، اور پولیس نے ایک بوگی میں سے تو کو کاٹ کے اس میں سے جو ہیں بندے نکالے، اور دوسرے میں جس میں یہ 15 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کو بھی کاٹ کے انہوں نے جو باڈیز تھیں وہ نکالنی پڑی تھی۔ یہ گڈس ٹرین جو تھی اس نے ہٹ کیا تھا کنچا گنجا ایکسپریس کو، جو کہ ٹریول کر رہی تھی کولکتہ سے نارتھ ایسٹرن تریپورہ کی طرف، جس وقت یہ ٹکر ہوئی تھی۔ اور اس میں جو ہے ڈیتھس جو ہوئی ہیں اس کے اندر ایک ڈرائیور، ایک گارڈ اور پیسنجر جو ہے ٹرین کا وہ بھی شامل ہیں۔ ریلوے اتھارٹیز جو ہیں انہوں نے ابھی تک اس کا ریزن تو نہیں بتایا ہے، لیکن انہوں نے ڈرائیور کو دوش دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ ڈرائیور کو ایک سگنل دیا گیا تھا اپنے آپ کو یا چینج کرنے کا یا رکنے کا، لیکن اس کو بالکل سمجھ میں نہیں آئی اور وہ اسی سپیڈ سے چلتا رہا اور اس نے جا کے اس کو جو ہے ٹکر دی ہے۔ اور اتنی زور سے یہ ٹکر ہوئی تھی کہ ایک جو بوگی تھی وہ تو ہوا میں کھڑی ہو گئی، تو پھر اس کو بڑی مشکلوں سے جو ہے وہ نیچے پکڑ کے لانا پڑا۔ تو یہ جو ہے جی بڑی آج افسوس کی وہاں پہ بات ہوئی ہے۔ ممبئی کرائم برانچ جو ہے اس نے جناب اریسٹ کیا ہے بنواری لال لٹو لال گجر کو، بورڈا کے جو ولیج ہے راجستھان میں وہاں سے، کیونکہ یہ دوسرا لڑکا تھا جس نے کہ یوٹیوب کے اوپر سلمان خان کو مارنے کی دھمکی دی تھی۔ اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہی ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لارنس بشنوئے گینگ جو تھا اس نے بڑی طرح دھمکیاں دی ہیں سلو بھائی کو کہ بھئی ہم تم کو مار دیں گے۔ تو اپنے یوٹیوب کے اوپر یہ جو گجر صاحب ہیں ان کا جو چینل ہے ارے چلو یار، اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے سلمان خان کو مار دیں گے۔ پولیس نے اس کو ٹریس کرتے ہوئے اس کو ممبئی پولیس نے پکڑا اور انویسٹیگیشن کے لیے اب اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ایک جو اس کے خلاف ایف آئی آر ہے وہ ساؤتھ سائبر پولیس اسٹیشن ممبئی کے اندر لکھی گئی ہے۔ جس وقت یہ یوٹیوب کے اندر اس کی دھمکی آئی تھی تو راجستھان کو ایک جو ہے وہ بھیجی گئی تھی، ٹیم بھیجی گئی تھی اس کو پکڑنے کے لیے، اور اس کو پھر یہ پکڑ کے ممبئی پولیس لائی تھی۔ اس سے پہلے جو ہے 4 جون کو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ممبئی کرائم برانچ نے سلمان خان اور ان کے بھائی ارباز جو ہے ان کے جو ان کے گھر کے باہر فائرنگ ہوئی تھی جو کہ الیجلی کی تھی بشنوئے گینگ نے، اس سلسلے میں بات چیت کی تھی۔ تو اس میں سلمان خان نے کہا تھا کہ ان کا جو بینڈرا کا گھر ہے وہاں پہ یہ فائرنگ ہوئی تھی، وہ لیٹ نائٹ ایک پارٹی ان کے گھر میں چل رہی تھی، اس کے بعد یہ سوئے ہوئے تھے جب یہ بلٹس فائر کی گئی تو اس کی وجہ سے پھر یہ اٹھے۔ تو اب سلو بھائی کی لائف کو تو بڑا خطرہ ہے جی یہ۔ اور جناب سوناکشی سنہا جو ہیں وہ اب شادی کریں گی ظہیر اقبال کے ساتھ جون 23 کو، اور یہ ظہیر اقبال کے ساتھ پچھلے 7 سال سے ڈیٹ کر رہی تھیں۔ تو لوگوں کو آج بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون ہے ظہیر اقبال۔ تو ظہیر اقبال صاحب جو ہیں جی 10 دسمبر 1988 میں پیدا ہوئے تھے، یہ نان فلمی گھر سے ہیں، لیکن ان کے والد صاحب جو ہیں اقبال رتنسی بہت بڑے بزنس مین ہیں ہندوستان کے اور جیولری بزنس کے اندر ہیں۔ انہوں نے اپنی سکولنگ جو ہے بامبے سکاٹش سکول کے ساتھ کی ہے اور رنویر کپور بھی اسی سکول میں پڑھتے تھے اور ان کے سینئر تھے۔ ان کی مدر جو ہیں ہوم میکر ہیں، لیکن ان کی بہن جو ہیں سیلیبریٹی سٹائلسٹ ہیں، اور ان کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ کمپیوٹر انجینئر ہے۔ اور سوناکشی سنہا جو ہے وہ ان کو ان سے پیار ہو گیا تھا، اور خیر یہ تو نیڈلیس ہے یہاں پہ بتانا کہ یہ مسلمان ہے ظہیر اقبال سے آپ کا آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہی بلانگس ٹو اے مسلم فیملی۔ تو یہ جی اب ان کی 23 کو शादी होगी। मेघना गुलजार जो है, गुलजार साहब की बेटी, अब वो एक और जो है रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, और ये जो था 2019 का जो एक हैदराबाद रेप एंड मर्डर केस था उसके ऊपर ये फिल्म बना रही है, जिसके के अंदर करीना कपूर और आयुष्मान खुराना जो है फॉर द फर्स्ट टाइम नजर आएंगे। इसमें अलेजली चार लोग जो थे उन्होंने, ये एक वेटरनरी डॉक्टर थी 26 इयर्स की शमशाबाद में, उसको जो है वो रेप किया था, लेकिन ये पकड़े गए थे और इनको फिर जेल की गई थी। हैदराबाद पुलिस जो थी उन्होंने इन चारों को जिस वक्त सीन रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कि तुम उधर कैसे गए और तुमने कैसे उस लड़की को रेप किया, उसको लेके जा रहे थे, तो पुलिस ने बताया जी कि उन्होंने गोली मार के इनको उस वक्त मारना पड़ा जब ये भागने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन असल में तो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में कंक्लूड किया गया था कि ये सारे का सारा एनकाउंटर जो है ये स्टेज किया गया था, असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो इसके ऊपर जो है अब मेघना गुलजार फिल्म बनाएगी। और जनाब यूरोपियन चैंपियनशिप जो है वो आपको पता ही है, यूरो 2024 शुरू हो गया है। इसमें ग्रुप ई का जो ओपनर था उसमें रोमानिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन 24 इयर्स हिस्ट्री जो है यूक्रेन को हराया 3-0 से और अपना ओपनर जीता। कैप्टन और मैन ऑफ द मैच जो था निकोलाय स्टैंची उन्होंने, और मिडफील्डर राजवान मरीन और देनिस द्रागस जो है उन्होंने एक एक गोल जो थे वो बनाए थे। और यूक्रेन की टीम बड़ी ही तगड़ी थी, सरहे रैब्रोव इसको जो है हेड कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये हारी और बड़ा ये उनके लिए शॉकर था। रोमानिया जो है ये उसकी सेकंड विन है इन 17 मैचेस इन यूरोपियन चैंपियनशिप्स, पहली उनकी जो थी 3-2 से विन उन्होंने की थी इंग्लैंड के अगेंस्ट इन यूरो कप इन 2000। तो उसके बाद जनाब अब जो है 24 इयर्स के बाद उन्होंने फिर से जीता है। और जनाब हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं उन्होंने ईद सेलिब्रेट की जी फ्लोरिडा के अंदर लॉडर हिल के अंदर, और यहां पे होटल के अंदर ही प्रेयर्स की गई थी ईद की, जिसको के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने लीड की थी। उसके बाद इन्होंने एक दूसरे को जो है ग्रीट किया और फोटोज बनाई। बाबर, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ, शादाब अहमद, आजम खान, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये यूएसए में कुछ दिन रहेंगे, और मोहम्मद आमिर जो है वो तो जल्द ही इंग्लैंड के लिए चला जाएगा क्योंकि वहां पे डर्बीशायर क्रिकेट क्लब के लिए ये अब गेम्स शुरू करेगा अपनी, और बाकी की टीम जो है मियामी से जा सकती है दुबई, और फिर ये पाकिस्तान में पहुंचेंगे 19th को। पाकिस्तान ने अलबत्त जो है आयरलैंड से 3 विकेट से जीते थे, वो यहां पे लॉडर हिल फ्लोरिडा के अंदर ही, ये जो सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम था यहां पे, और ये जो है इनका ग्रुप ए के अंदर अलबत्त जो है ये अब 3rd नंबर पे हैं। जाहिर है कि अब ये सुपर 8 में तो से तो निकल ही गए थे फ्राइडे को ही, लेकिन जा नहीं सकेंगे, ये इन्होंने लूज किए थे अपने पहले 2 मैचेस यूएस और इंडिया के खिलाफ। बहरहाल जी ईद पे इन्होंने एक दूसरे के साथ अच्छी तरह गुजारा। पाकिस्तान के हेड कोच जो हैं साउथ अफ्रीकन गैरी कर्स्टन, उन्होंने कहा है कि जो लड़के सही से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जो यूनिटी नहीं दिखा रहे हैं टीम के अंदर, जो फिटनेस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, अपने स्किल्स को एनहांस नहीं कर रहे हैं, उनको बिल्कुल फ्यूचर में टीम के अंदर नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने इतनी ज्यादा क्रिकेट खेली है, इनको कौन बताएगा कि किस वक्त इनको सही शॉट लगानी है और कब और कैसे इनको खेलना है। अलबत्त वो कहते हैं जी कि अब जो है मैं देखूंगा कि कौन जो है प्रॉपरली अपना स्किल्स का और फिटनेस का ट्रेनिंग कर रहा है और टीम के साथ यूनाइटेड है। इससे पहले जो बाबर आजम है उन्होंने जब फ्लोरिडा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब ये पाकिस्तान जीता था आयरलैंड से, तो उस वक्त उन्होंने कहा था जी कि एक आदमी को ब्लेम देना बिल्कुल ठीक नहीं है, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीम सबकी होती है, हम पाकिस्तान जाकर डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ, हमारे हारने की वजह जो है वो क्या है। जिसके ऊपर गैरी कर्स्टन ने कहा था कि मुझे टीम के अंदर यूनिटी नजर नहीं आ रही है। इसी के ऊपर फर्दर बात करते हुए हरभजन सिंह ने गैरी कर्स्टन को कहा कि तुम अपना टाइम पाकिस्तान टीम के ऊपर वेस्ट कर रहे हो, तुम वापस हिंदुस्तान आओ और हमारी टीम को कोच करो, बिकॉज वी आर वर्थ इट। ठीक है भाईजान, खुश हो तुम? ठीक है जी। और जनाब जैसे कि हम आपको बड़े दिनों से बता रहे थे कि शायद अफरीदी शाह साहब जो है वो बॉम्ब फोड़ेंगे, उन्होंने फाइनली बॉम्ब फोड़ दिया। खैर कुछ तो हमें पता ही था कि वो क्या कहने वाले हैं, मगर फिर भी थोड़ी थोड़ी बात जो है वो अब जो थी सामने जो थी अब ये खुल के सारी आ गई है सामने। शायद अफरीदी साहब ने कहा जी कि आपको पता ही है कि जिस वक्त T20 वर्ल्ड कप के जिस वक्त वर्ल्ड कप में अच्छा पाकिस्तान की टीम नहीं खेली थी अंडर बाबर आजम, तो इसको हटा के शाहीन शाह अफरीदी को लगाया गया था, और शाहीन को फिर जब उसके अंडर भी टीम सही नहीं खेली तो इसको हटा के फिर से बाबर आजम जो है उसको लेकर आ गए थे। फॉर्मर पीसीबी के जो चीफ थे जका अशरफ, उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को व्हाइट बॉल का कैप्टन बनाया था टीम की बुरी परफॉर्मेंस जो थी वर्ल्ड कप में 2023 में, लेकिन फिर इसको जब रीइंस्टेट किया गया तो इसको चाहिए था कि ये ना बोल देता। शाहीन शाह के अंडर टीम जो है 4-1 उसने लूज किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन इसी को कंटिन्यू करना चाहिए था। और अफरीदी और बाबर जो हैं उनको जैसे कि इनके बीच में जैसे कि आपने वो कहते हैं कि जैसे आपने बात सुनी होगी कि जब ये टीम बन रही थी तो इनको कहा गया था शाहीन शाह को कि भाई आप वाइस कैप्टन बन जाएं और बाबर के अंडर खेलें, तो उसने ना कर दी थी। तो जिस वक्त अफरीदी को कैप्टन बनाया था तो उस वक्त जब इसको वापस बाबर को लाने की बात कर रहे थे तो इसको भी ना कहना चाहिए था। जैसे शाहीन शाह उसके अंडर खेलता रहा है तो बाबर को भी उसके अंदर अगर वो खेल लेता तो कोई ये मसले नहीं होते। लेकिन भारत सारे का सारा कसूर जो है बाबर का नहीं है, सिलेक्शन कमेटी का भी है। सिलेक्शन कमेटी को भी पता होना चाहिए कि किसको कैप्टन बनाना है और कब बनाना है, क्योंकि बातें बहुत सारी आ रही हैं कि बाबर को बिल्कुल नहीं पता है कि कैप्टेंसी जो है वो कैसे की जा सकती है। तो ये सिलेक्टर्स जो है वो भी कह रहे हैं, तो उसके ऊपर जी आज इन्होंने सारी ये बात की। ठीक है जी। और जनाब न्यूजीलैंड ने विन किया विद 7 विकेट्स ऑन पप्पू यानी कि पेपू न्यू गिनी, और जो है 12.2 ओवर्स में ही ये इन्होंने सारा अपना जो टारगेट था ये पूरा किया। ट्रेंट बोल्ट ने 2 विकेट्स ली, और जो टी20 वर्ल्ड कप का